एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी गिनती 20वीं और 21वीं सदी के शायद सबसे प्रभावशाली और हाँ अक्सर सबसे विवादास्पद बुद्धिजीवियों में भी होती है, अवराम नोम चॉम्स्की। एक ऐसा नाम जिसने अकादमिक दुनिया में तो जैसे भूचाल ला दिया और सार्वजनिक बहसों में भी दशकों तक गूंजता रहा।
बिल्कुल, चॉम्स्की एक बहुत ही अनोखा संगम है। एक तरफ भाषा विज्ञान में इतनी गहरी वैज्ञानिक समझ और दूसरी तरफ सत्ता, राजनीति, मीडिया, इन सब पर एकदम बेबाक तीखी टिप्पणी।
हाँ, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि भाषा को समझने का हमारा नजरिया बदला,
सही कहा,
बल्कि दशकों तक दुनिया भर में जो लोग सत्ता पर सवाल उठाते रहे हैं उनके लिए वो एक प्रेरणा भी बने। तो आज हम कोशिश करेंगे चॉम्स्की के विचारों की इस पूरी उलझी हुई सी दुनिया को समझने की, कैसे उन्होंने भाषा विज्ञान की जमी जमाई बातों को चुनौती दी, कैसे राजनीति में अपनी एक अलग आवाज बनाई और आज भी उनकी बातें क्यों मायने रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल।
देखिए, चॉम्स्की का जो बौद्धिक सफर है वो शुरू होता है मध्य 20वीं सदी में। अब ये वो दौर था जब दुनिया शीत युद्ध के साये में थी।
हाँ, वो तनाव का माहौल।
बिल्कुल, सामाजिक और नागरिक अधिकार आंदोलन भी चल रहे थे, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। एक तरफ तो विज्ञान को लेकर बड़ा जोश था, पर दूसरी तरफ जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ, वियतनाम युद्ध, इन सब ने सरकारी ताकतों पर, कॉरपोरेट ताकतों पर सवाल भी खड़े कर दिए थे।
और उस समय अकादमिक दुनिया में क्या चल रहा था, खासकर मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान में?
उस वक्त मनोविज्ञान में बोलबाला था बीएफ स्किनर के व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म जिसे कहते हैं।
अच्छा, बिहेवियरिज्म।
हाँ, वो मानते थे कि इंसान का जो भी व्यवहार है, यहां तक कि भाषा भी, वो सिर्फ बाहरी माहौल से सीखी गई चीजें हैं, आदतें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। मतलब दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उससे ज्यादा लेना देना नहीं।
यानी हम बस बाहरी चीजों पर रिएक्ट करते हैं एक मशीन की तरह।
हाँ, कुछ कुछ वैसा ही नजरिया था उनका। और भाषा विज्ञान में भी जो ज़ेलिग हैरिस जैसे लोग थे वो भाषा के बाहरी रूप पर, उसके पैटर्न पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे।
तो इसी माहौल में चॉम्स्की आए?
जी, इसी माहौल में उन्होंने अपने, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार रखे। उन पर कई अलग अलग सोच का असर दिखता है, जैसे डेकार्त का तर्कवाद कि कुछ ज्ञान जन्मजात होता है।
अच्छा।
मिखाइल बाकुनिन जैसे अराजकतावादी विचारक थे, उनकी सत्ता विरोधी सोच, जॉर्ज ऑरवेल जिस तरह वो सत्ता और भाषा के घालमेल को देखते थे, तो चॉम्स्की ने सीधे सीधे स्किनर के व्यवहारवाद को चुनौती दी। और बाद में तो मिशेल फुको जैसे बड़े विचारकों के साथ उनकी बहस भी हुई मानव स्वभाव पर, वो काफी मशहूर है।
तो माहौल काफी दिलचस्प था, उम्मीदें भी थी, मोहभंग भी था। इसी उथल पुथल ने शायद उनकी सोच को गढ़ा होगा। उनकी शुरुआती जीवन के बारे में बताइए कुछ।
नोम चॉम्स्की का जन्म हुआ 1928 में फिलाडेल्फिया, अमेरिका में। उनका परिवार पूर्वी यूरोप से आया था, यहूदी अप्रवासी थे। उनके पिता विलियम चॉम्स्की वो हिब्रू भाषा के जाने माने विद्वान थे।
ओह, अच्छा, तो घर में ही माहौल था।
बिल्कुल, बौद्धिक बहसें, भाषा की बनावट पर चर्चा, ये सब घर में ही चलता था।
अच्छा,
तो नोम की दिलचस्पी बचपन में ही भाषा और राजनीति में भी जग गई।
और ये सुना है कि वो बचपन से ही बहुत तेज थे, कुछ लिखने विखने लगे थे जल्दी।
हाँ, ये बात काफी मशहूर है। कहते हैं सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने स्पेनिश गृह युद्ध और फांसीवाद के खतरों पर एक लेख लिख डाला था।
10 साल की उम्र में?
हाँ, और उसमें अराजकतावादी विचारों की झलक थी।
सोचिए, इतनी कम उम्र में ये राजनीतिक चेतना, ये आलोचनात्मक सोच, गजब है।
वाकई। फिर उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे आगे बढ़ी, वो भी जल्दी ही। सिर्फ 16 साल की उम्र में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात हुई ज़ेलिग हैरिस से, भाषाविद थे वो, उनके गुरु बने।
अच्छा, ज़ेलिग हैरिस।
हाँ, उन्हीं के साथ काम करते हुए उन्होंने भाषा की संरचना पर ध्यान देना शुरू किया और यहीं से उनके भाषा विज्ञान वाले सफर की नींव पड़ी। 1955 में उन्होंने पीएचडी पूरी की और उनकी थीसिस ने ही इशारा दे दिया था कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है।
चलिए अब आते हैं उस बड़े काम पर। उनके मुख्य विचार, खासकर भाषा विज्ञान, यहीं से तो वो चॉम्स्की क्रांति हुई ना?
बिल्कुल, भाषा विज्ञान में चॉम्स्की का सबसे बड़ा धमाका था व्यवहारवाद को नकारना। उन्होंने कहा, भाई देखो, भाषा सिर्फ सीखी हुई आदतें नहीं हो सकती हैं, ये इंसान की एक जन्मजात, एक बायोलॉजिकल क्षमता है, इनेट फैकल्टी,
जन्मजात क्षमता।
हाँ, और यहीं से आया उनका सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत यूनिवर्सल ग्रामर का, यानी सार्वभौमिक व्याकरण।
सार्वभौमिक व्याकरण, इसका क्या मतलब हुआ? क्या सारी भाषाओं का ग्रामर एक जैसा है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि हम सबके दिमाग में जन्म से ही भाषा के कुछ बुनियादी सिद्धांत, कुछ नियम मौजूद होते हैं। जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना कंप्यूटर में,
हाँ।
वैसे ही कुछ जो हमें कोई भी इंसानी भाषा सीखने की काबिलियत देता है, चाहे हम हिंदी सीखें, अंग्रेजी या कोई और भाषा। ऊपर ऊपर भाषाएं अलग दिख सकती हैं, पर उनकी गहरी बनावट में कुछ एक जैसे सिद्धांत काम करते हैं।
ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका कोई सबूत, कुछ तर्क दिया उन्होंने?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक तर्क दिया जिसे कहते हैं पावर्टी ऑफ द स्टिमुलस, मतलब उत्तेजना की कमी या अपर्याप्तता।
पावर्टी ऑफ द स्टिमुलस, ये क्या है?
इसका मतलब ये है कि बच्चे अपने आसपास जितनी भाषा सुनते हैं वो काफी सीमित होती है, अधूरी होती है, कई बार तो उसमें व्याकरण की गलतियां भी होती हैं, है ना?
हाँ ये तो है।
पर उसके मुकाबले बच्चे जो भाषा बोलना सीखते हैं वो कहीं ज्यादा जटिल होती है, सही होती है, रचनात्मक होती है। वो ऐसे ऐसे वाक्य बना लेते हैं जो उन्होंने पहले कभी सुने ही नहीं होते।
अच्छा, मतलब जितनी जानकारी मिलती है उससे कहीं ज्यादा वो पैदा कर लेते हैं। तो ये जो अतिरिक्त क्षमता है, ये कहाँ से आती है?
चॉम्स्की ने कहा ये उसी जन्मजात यूनिवर्सल ग्रामर से आती है। अगर सब कुछ सिर्फ नकल करके या आदत से सीखते तो बच्चे इतनी तेजी से, इतनी क्रिएटिविटी से भाषा नहीं सीख पाते। ये दिखाता है कि उनके दिमाग में भाषा का कोई ना कोई ढांचा पहले से है।
ये तो सोचने वाली बात है। इसने तो भाषा सीखने की पूरी समझ ही बदल दी होगी उस वक्त।
बिल्कुल, पूरी तरह से। और इसी आधार पर उन्होंने दिया जेनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत, उत्पादनशील व्याकरण। ये क्या है? ये नियमों का एक, कह लीजिए, फॉर्मल सिस्टम है जो बताता है कि कैसे गिने चुने शब्दों और नियमों से इंसान अनगिनत नए व्याकरण के हिसाब से सही वाक्य बना सकता है।
और यहीं पर आता है उनका वो मशहूर अजीब सा वाक्य, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, रंगहीन हरे विचार उग्रता से सोते हैं। इसका क्या मतलब था ये सब बताने में?
हाँ, ये वाक्य देखिए व्याकरण के हिसाब से एकदम ठीक है, संज्ञा क्रिया विशेषण सब अपनी जगह, पर इसका कोई मतलब निकलता है? रंगहीन भी और हरे भी विचार सो रहे हैं, वो भी उग्रता से?
नहीं, मतलब तो कुछ नहीं बनता।
बस यही चॉम्स्की दिखाना चाहते थे कि वाक्य की संरचना, उसका सिंटैक्स, वो उसके अर्थ से, सिमेंटिक्स से अलग हो सकता है। ये उस सोच पर सीधा हमला था जो भाषा को सिर्फ व्यवहार मानती थी। इसने भाषा विज्ञान का फोकस बाहरी व्यवहार से हटाकर मन की, दिमाग की अंदरूनी संरचनाओं पर ला दिया। इसी को संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, और चॉम्स्की इसके एक तरह से जनक माने जाते हैं।
तो ये तो हुई भाषा और मन की बातें, पर चॉम्स्की सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे। उनकी पहचान का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है उनका राजनीतिक चिंतन, उनकी सक्रियता। ये पहलू कैसे सामने आया?
हाँ देखिए, जैसे उन्होंने भाषा की ये छुपी हुई संरचनाएं खोजी ना, वैसे ही उन्होंने समाज और राजनीति में सत्ता की जो अनदेखी या छुपी हुई व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। राजनीतिक तौर पर वो खुद को कहते हैं लिबर्टेरियन सोशलिस्ट, उदारवादी समाजवादी, या और सटीक कहें तो अराजकतावादी श्रमिक संघवादी, एनार्को सिंडिकलिस्ट।
ये थोड़े मुश्किल शब्द हैं, अराजकतावादी श्रमिक संघवादी, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में?
इसका मूल विचार ये है कि सत्ता का जो केंद्रीकरण होता है, चाहे वो सरकार के हाथ में हो या बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में, वो दमनकारी होता है। तो वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां सत्ता ऊपर से न चले बल्कि नीचे से चले, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, नियंत्रण सीधे मजदूरों के हाथ में हो, समुदायों के हाथ में हो, उनके अपने बनाए संगठनों, सिंडिकेट्स के हाथ में हो।
अच्छा, मतलब ऊपर से हुकूमत नहीं, नीचे से अपना इंतजाम।
बिल्कुल, स्वप्रबंधन। और उनकी आलोचना का निशाना कौन रहा है? मुख्य रूप से अमेरिकी विदेश नीति, खासकर दुनिया भर में अमेरिका का जो सैन्य दखल रहा है, और कॉरपोरेट मीडिया। उन्होंने दशकों तक अमेरिकी सरकार की नीतियों की जबरदस्त तीखी आलोचना की है।
हाँ, मीडिया पर उनके काम का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। उनकी वो किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट बहुत मशहूर हुई।
जी हाँ, 1988 में आई थी, एडवर्ड हरमन के साथ लिखी थी। ये एक मील का पत्थर है। इसमें उन्होंने दिया प्रोपोगेंडा मॉडल। ये मॉडल किसी साजिश के बारे में नहीं है बल्कि ये व्यवस्था के बारे में है। ये बताता है कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो कैसे कुछ खास फिल्टर से गुजर कर खबरें पेश करता है।
फिल्टर्स, कैसे फिल्टर्स?
जैसे मीडिया का मालिकाना हक किसके पास है, कुछ बड़ी कंपनियों के पास, विज्ञापनों पर कितनी निर्भरता है, खबरों के लिए सरकारी और कॉरपोरेट स्रोतों पर कितना भरोसा किया जाता है, जो आलोचना वाली खबरें हैं उन्हें कैसे दबाया जाता है, और एक आम सहमति वाली विचारधारा होती है जैसे उस समय था साम्यवाद का विरोध, ये अब है मुक्त बाजार का विचार, ये सब मिलकर एक तरह से खबरों को छान देते हैं।
तो नतीजा ये होता है कि खबरें अपने आप ही सत्ता और कॉरपोरेट हितों के पक्ष में झुक जाती हैं।
हाँ, अनजाने में ही, ये कोई साजिश नहीं बल्कि सिस्टम ही ऐसा है, ये एक व्यवस्था का विश्लेषण है, पत्रकारों की नियत का नहीं।
और इसी सोच से जुड़ा है उनका वो लेख भी, बौद्धिकों की जिम्मेदारी।
हाँ, 1967 का द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, वियतनाम युद्ध के समय लिखा था, बहुत प्रभावशाली लेख है। उसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई जिन लोगों के पास ज्ञान है, जानकारी है, अपनी बात कहने का मंच है, उनका ये नैतिक फर्ज है कि वो सत्ता से सच बोलें, उसके झूठ को, उसके प्रोपोगंडा को बेनकाब करें, और जो हाशिए पर हैं उनकी आवाज बने।
और ये सिर्फ उनके विचार नहीं थे, उन्होंने इसे जिया भी, लगातार लिखा, बोला, प्रदर्शनों में शामिल हुए। उनके कुछ खास कामों का अगर जिक्र करें तो
भाषा विज्ञान में तो हमने बात की, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स 1957, एस्पेक्ट्स ऑफ द थियोरी ऑफ सिंटैक्स 1965, ये तो फाउंडेशनल है, लैंग्वेज एंड माइंड 1968 भी है, और राजनीतिक क्षेत्र में द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स 1967 और मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट 1988 तो क्लासिक हैं ही। बाद में भी उन्होंने लिखा, हेजेमनी और सर्वाइवल 2003 जैसी किताबें हैं जिनमें अमेरिकी दबदबे की आलोचना है, और ये जानकर ताज्जुब होता है कि उन्होंने 150 से ज्यादा किताबें लिखी हैं।
150 से ज्यादा, ये तो कमाल है। उनकी विरासत, उनके असर को कैसे देखेंगे आप?
असर तो बहुत जबरदस्त और बहुत फैला हुआ है। अकादमिक दुनिया में तो उन्होंने भाषा विज्ञान को बिल्कुल नया रूप दे दिया। संज्ञानात्मक विज्ञान, कॉग्निटिव साइंस जैसा जो पूरा फील्ड है, उसकी नींव रखने में उनका बड़ा हाथ है। व्यवहारवाद को चुनौती देकर उन्होंने मन के अध्ययन को फिर से केंद्र में ला दिया। आज भी भाषा विज्ञान में जो बहसें होती हैं वो काफी हद तक उनके काम के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। भले ही उनके कुछ शुरुआती विचारों में बदलाव भी आए हैं, नई दिशाएं भी निकली हैं।
और अकादमिक दुनिया के बाहर आम जनजीवन में,
वहां वो एक तरह से असहमति जताने वाले बुद्धिजीवी का चेहरा बन गए, डिसिडेंट इंटेलेक्चुअल। उन्होंने दुनिया भर में न जाने कितने कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, आम लोगों को सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत दी है, आधिकारिक बातों पर शक करने और दूसरे नजरिए तलाशने के लिए प्रेरित किया है।
हाँ, और उनका मीडिया वाला विश्लेषण तो आज इस सोशल मीडिया और फेक न्यूज के जमाने में शायद और भी ज्यादा मौजू लगता है,
जाता है। ये उनके व्यापक असर को दिखाता है।
उनके कुछ कथन भी बहुत मशहूर हुए, एक तो वो ही कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली,
हाँ, जो दिखाता है कि व्याकरण और अर्थ अलग हो सकते हैं।
एक और बहुत जरूरी कथन है उनका अभिव्यक्ति की आजादी पर। वो कहते हैं, अगर हम उन लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते जिनसे हम नफरत करते हैं, तो हम इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते।
ये बहुत गहरी बात है। मतलब असली परीक्षा तो तभी है जब आप उसे भी बोलने का हक दें जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते।
सही बात है। ये दिखाता है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना मानते थे, और मीडिया पर उनका वो कथन भी सोचने लायक है, लोगों को निष्क्रिय और आज्ञाकारी बनाए रखने का चालाक तरीका ये है कि स्वीकार्य राय के दायरे को सख्ती से सीमित कर दो, लेकिन उस दायरे के अंदर खूब जोरदार बहस होने दो। अच्छा, मतलब बहस तो खूब हो रही है, हल्ला मच रहा है, पर मुद्दे वही हैं जो सत्ता चाहती है, जो बुनियादी सवाल है वो बहस से ही बाहर हैं।
हाँ, ये उसी प्रोपेगेंडा मॉडल का एक पहलू है। ये दिखाता है कि कंट्रोल हमेशा खुली सेंसरशिप से नहीं होता, कई बार बहुत महीन तरीकों से होता है।
जाहिर है, जो इतना मुखर हो, इतने क्रांतिकारी विचार रखें, उसकी आलोचना भी तो खूब हुई होगी।
हाँ, बिल्कुल हुई, और दोनों ही तरफ, भाषा विज्ञान में भी और राजनीति में भी। भाषा विज्ञान में आलोचक कहते हैं कि भाई ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है, इसके ठोस न्यूरोबायोलॉजिकल सबूत अभी भी उतने मजबूत नहीं है।
अच्छा।
कुछ लोग मानते हैं कि भाषा सीखने को जो सामान्य दिमागी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पैटर्न पहचानना या आंकड़ों से सीखना, उनसे भी समझाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि कोई खास जन्मजात ग्रामर हो ही। कुछ भाषाविद ये भी मानते हैं कि भाषा जैविक से ज्यादा सामाजिक चीज है, संपर्क से, इस्तेमाल से विकसित होती है।
और राजनीतिक आलोचनाएं, वो तो शायद और भी तीखी रही होंगी।
हाँ, बहुत। अक्सर उन पर यह आरोप लगता है कि वो एक तरफा हैं, सिर्फ अमेरिका की बुराई करते हैं, पश्चिमी लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क नहीं करते। कंबोडिया में जो खमेरूज का नरसंहार हुआ था, उस पर उनके शुरुआती विश्लेषण की बहुत आलोचना हुई थी। कहा गया कि उन्होंने नरसंहार के पैमाने को कम करके आंका।
और वो फ्रांस वाला मामला भी था एक, फॉरिसन मामला।
हाँ, रॉबर्ट फॉरिसन, वो एक लेखक थे जो हॉलोकॉस्ट यानी यहूदियों के नरसंहार से इनकार करते थे। चॉम्स्की ने उनकी एक किताब की प्रस्तावना लिख दी।
अरे क्यों?
उनका तर्क था कि वो फॉरिसन के विचारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का बचाव कर रहे हैं, चाहे उसके विचार कितने ही घिनौने क्यों ना हो। लेकिन इस पर जबरदस्त विवाद हुआ। उन पर आरोप लगा कि वो हॉलोकॉस्ट खंडन को एक तरह की वैधता दे रहे हैं। इसने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं पर एक बहुत मुश्किल बहस छेड़ दी थी।
तो विवाद तो हमेशा उनके साथ रहे। कुछ और मजेदार बातें या किस्से उनके बारे में। वो 10 साल वाली बात तो कमाल थी ही।
एक दिलचस्प बात यह है कि गणितीय भाषा विज्ञान पर जो उनका शुरुआती काम था ना, उसका असर कंप्यूटर साइंस और AI के विकास पर भी पड़ा, खासकर फॉर्मल लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थ्योरी पर।
अच्छा, और वो सिर्फ लिखते बोलते नहीं थे, सड़कों पर भी उतरते थे।
हाँ, एक्टिविस्ट भी थे। वियतनाम युद्ध के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कई बार गिरफ्तार भी हुए।
गिरफ्तार भी हुए?
जी हाँ। और एक और मजेदार बात, कहते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर भाषाविद होने के बावजूद उन्हें खुद नई भाषाएं सीखने में थोड़ी मुश्किल होती थी।
क्या बात कर रहे हैं? मतलब दुनिया का सबसे बड़ा भाषा वैज्ञानिक और उसे भाषा सीखने में मुश्किल, ये सुनकर तो मुझ जैसे आम इंसान को थोड़ी हिम्मत मिलती है।
हाँ, ये एक मजेदार विरोधाभास बताया जाता है। और एक और खास बात थी उनकी पहुंच। वे दुनिया भर से आने वाले आम लोगों के सैकड़ों ईमेल का जवाब अक्सर खुद देते थे, बुढ़ापे में भी। ये उनके जमीनी जुड़ाव को दिखाता है। अपनी शोहरत के बावजूद वे सादा जीवन जीते थे और अपनी लेक्चर फीस का बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में दान कर देते थे।
तो नोम चॉम्स्की वाकई एक असाधारण शख्सियत है। एक तरफ भाषा और मन की गहराइयों में उतरने वाला वैज्ञानिक, दूसरी तरफ दुनिया की सत्ता संरचनाओं से लगातार टकराने वाला आलोचक।
बिल्कुल, उन्होंने भाषा की जन्मजात क्षमता पर जोर देकर मानव की जो आंतरिक स्वतंत्रता है, रचनात्मकता है, गरिमा है, उसे एक तरह का वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की। उनका पूरा काम, उनका पूरा जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या सिर्फ अकादमिक बहसों के लिए, या फिर दुनिया को ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, सत्ता को चुनौती देने के लिए भी।
उनका जीवन और काम हमें भाषा, शक्ति और सत्य के इन उलझे हुए रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये छोड़ा जा सकता है, जिस तरह चॉम्स्की ने हमें भाषा के अंदर छुपे हुए नियमों को, उसके व्याकरण को देखने के लिए उकसाया, क्या हम अपने चारों ओर की दुनिया में भी, मीडिया में, राजनीति में, समाज में, इसी तरह की छिपी हुई संरचनाओं और नियमों को पहचान सकते हैं? वो कौन से अनदेखे व्याकरण हैं जो हमारी सोच को, हमारी राय को, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं? क्या सच हमेशा सतह पर होता है, या उसे खोजने के लिए अक्सर गहराई में, परतों के नीचे उतरना पड़ता है?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।